3/2/2002 कल पढ़ रहे थे बाप दादा को युद्ध ग्रुप पर नाच है। देखो दादियों को भी युद्ध पर नाच है। दादी को प्यार है ना युद्ध से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है सुकुमार, कुमार नहीं सुकुमार, एक ही कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखलाने वाले। अच्छा कुमारों को काम दे, हिम्मत है करना पड़ेगा, कुमारियां करेगी। तब काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसा ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन लेकिन भी है, ज्यादा काम नहीं देते। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुबन में तो आए फिर घर जाए तो बदल जाए, नहीं ऐसे पक्के बनकर लाना जो बाप दादा देख देख कहे वाह कुमार वाह। ऐसे तैयार है करेंगे ऐसे? थोड़ा सोचो, ऐसे ही हाथ नहीं उठा दो, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स भी करेंगे, डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठाओ तो आप भी 10 लाएंगे ना, फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे। फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उनको इनाम देंगे, इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज्यादा में ज्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाए तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरेंगे, फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो यह कुमार। लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी यह संकल्प भी नहीं उठ सकता, हुई पड़ी है। सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा, यह प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है। मुरली है 3/2/2002 की, कुमारों से पापा बात कर रहे हैं। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखलाने वाले। कुमार है सुकुमार, कुमार नहीं सुकुमार है। तो कुमारों को काम दे, हिम्मत है करना पड़ेगा, कुमारियां करेगी। तो काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों को एक ही स्पेशल प्रोग्राम, कुमारों का एक ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन लेकिन भी है, ज्यादा काम नहीं देते। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुबन में आए फिर घर जाए तो बदल जाए, नहीं ऐसे पक्के बनकर लाना, बना कर लाना जो बाप दादा देख देख कहे क्या कहे वाह कुमार वाह। ऐसे तैयार है करेंगे ऐसे? थोड़ा सोचो, ऐसे ही हाथ नहीं उठा लो, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं एक एक कुमार किसको लाए, 10-10 कुमारों को लाए। वो कुमार कैसे हो? पक्के पक्के कुमार हो, कच्चे कच्चे न हो, पक्के पक्के कुमार, पक्के पक्की पक्की कुमारिया, पक्के पक्के योगी। कौन है वो पक्के योगी? जिनकी कर्मेंद्रिया चंचल ना हो, जिनकी कर्मेंद्रिया शीतल हो गई हो, शीतल हो गई है, शीतल स्थिर हो गई है, जो जवान नहीं, जवानी में बुढ़ापे का अनुभव। और पक्का योगी किसको कहेंगे? पक्का योगी, पक्का कुमार, पक्की कुमारी, कहीं पर भी किसी के भी नाम रूप में फंसेंगे नहीं। रिंचक मात्र भी दृष्टि इधर उधर नहीं जाएगी। ये बीमारी कैसी है? नाम रूप वाली गुप्त बीमारी है। और कैसी बीमारी है? कड़ी बीमारी है। और कैसी बीमारी है? घाटे में डालने वाली बीमारी है। और कैसी बीमारी है? कल की मुरली गिराने वाली बीमारी है। और कैसी बीमारी है? खराब बीमारी है, गुप्त इनकॉग्निटो सिकनेस। ये जो बीमारी है वो गुप्त बीमारी है, प्राइवेट बीमारी है।
डॉक्टर के पकड़ में नहीं
आती। नाम और रूप की बीमारी, नाम और रूप में फंसना, नाम और रूप की तरफ आकर्षित होना, नाम और रूप को देखकर इंद्रियां चलायमान होना। योगी अर्थात ही जिसकी इंद्रियां शांत हो गई है। इंद्रियां शांत ऐसे नहीं होती, बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता है। क्या जब कर्मेंद्रिया शांत हो गई तो क्या समझना, कहां तक पहुंचे हो? त्रेता तक।
छोड़ दी
कर्मेंद्रिया, इतना आसान नहीं है। केवल त्रेता तक पहुंचे हो, पहुंचना सूर्यवंशी तक है। अभी तो बहुत आगे है, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। अब इश्क की इंतहा और भी है, बहुत कड़ी साधना तपस्या की आवश्यकता है। जब कहीं कर्मेंद्रिया शांत होती है, लंबे समय अशरीरीपन का अभ्यास, तुम अशरीरी आए थे, तुम्हें अशरीरी वापस जाना है। कल की मुरली, अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है, परंतु वो अशरीरी जाने के लिए वह स्मृति चाहिए अशरीरीपन की। देह में रहते 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 आत्मा विस्मृत हो गई है, कुछ भी याद नहीं है। कभी परमधाम में थे, फिर नीचे उतरे थे, फिर इतने सारे जन्म लिए, ये सारी विस्मृति हो गई है। फिर से स्वयं को याद दिलाना, फिर से स्वयं को जगाना, स्वदर्शन चक्र फिराना, तो पक्के योगी अर्थात सबसे पहला तो कर्मेंद्रिय शीतल, कर्मेंद्रिय शांत, उत्तेजना समाप्त हुई है। एक, दूसरा नाम रूप में फंसेंगे नहीं, तीसरा चंचल दृष्टि चंचल वृत्ति समाप्त। प्रवृत्ति में रहते वृत्ति को क्या कर दो, तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगा। क्या कर दो? श्रेष्ठ वृत्ति, ऊंची वृत्ति, क्या कर दो पर वृत्ति को, वृत्ति को क्या कर दो, तो वृत्ति प्रवृत्ति में प्रगति का साधन बन जाएगी। एक बाप के साथ लगा दो, कितनी नई बात है। वृत्ति को कनेक्ट कर दो, एटीट्यूड को कनेक्ट कर दो बाप के साथ। एक विदेशी भाई पूछ रहा था, हिंदी में ट्रांसलेशन ऐसा ही है ना, हिंदी में ऐसा ही है कि इंग्लिश में कुछ गलत लग रहा है, कि एटीट्यूड को कनेक्ट करो बाप के साथ, ये कुछ और तो नहीं है। हमने कहा वही है। वृत्ति को ही लगा दो एक बाप के साथ, एक ही वृत्ति हो। कौन सी? एक बाप, दूसरा ना कोई। श्रेष्ठ वृत्ति, ऊंची वृत्ति, ऐसी वृत्ति हो जाए तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। तो अर्थात महान योगी, श्रेष्ठ योगी, पक्के योगी अर्थात जिनकी दृष्टि वृत्ति चंचल ना हो, एक से जोड़ दो वृत्ति को, वृत्ति को क्या कर दो, सर्व संबंध में बांध दो। अमरीश भाई, वृत्ति को क्या कर दो, सर्व संबंधों से बांध दो। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा चंचल है और उसे बिजी कर दो, बिजी होने के बाद भी अगर चंचलता करता है तो उसे बांध दिया जाता है। तो यहां वृत्ति को बांध दो सर्व संबंधों से। तो तीसरा योगी अर्थात दृष्टि और वृत्ति चंचल ना हो, आंखें स्थिर हो। योगी की आंखें जो होती है वो स्थिर होती है, योगी की आंखों में वो चंचलता नहीं होती है। आंखों को स्थिर करना, जबान को निश्चेष्ट, जहां है वही मुंह में, जैसे ही स्मरण आता है उसकी हलचल चालू होती है। बोला भी किसी ने जबान तो हलचल होती है मुंह में। निश्चेष्ट, चेष्टा रहित, स्थिर, स्थिर जबान और स्थिर आंखें। नासिकाग्र दृष्टि होती है योगी की, योगी की होता है ना नासिकाग्र, योगी के लिए कहा जाता है वो नासिकाग्र दृष्टि होती है उसकी। इस तरह आपने देखा हो, यहां देखते हैं एकाग्र होने के लिए। तो दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं, ये तीसरा। चौथा,
मीठे होंगे वो,
बहुत मीठे होंगे खुशबूदार, मीठे, सबसे प्यार नहीं, मीठे, मीठे का भी आधार क्या है, मीठे बनने का भी आधार आत्माभिमानी, जो जितना न्यारा है। योगी की क्वालिटीज में वो है न्यारापन, न्यारापन जो है ये योगी की क्वालिटी है। कहीं पर भी फंसेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं, सबसे एक न्यारापन रहेगा। संबंध संपर्क में न्यारापन, सभी चीजों में न्यारे, संपर्क में आए सेवा की खत्म, कोई लेना देना नहीं, टाटा बाय बाय। अनासक्त वृत्ति, ये योगी के लक्षण है। कहीं पर भी जाएंगे, कहीं पर भी न फंसना, किसी में भी न फंसना, व्यक्ति और वस्तु सभी के संपर्क में है, परंतु इन द वर्ल्ड बट नॉट इन द वर्ल्ड, दुनिया में है पर दुनिया में नहीं है, दुनिया में वो है पर दुनिया उनमें नहीं है, व्यक्तियों के बीच है पर व्यक्ति उनके अंदर नहीं है, ऐसा न्यारापन। जब चाहे तब डिटैच हो सके सबसे, तो योगी अर्थात न्यारा, और जो ऐसा न्यारा है वो स्वतः ही प्यारा है। प्यारे बनने का कोई पुरुषार्थ नहीं, मीठा बनने का कोई पुरुषार्थ नहीं है। मीठे बनने जाओगे और प्यारे बनने जाओगे तो फंस जाओगे किसी में,
दूसरों का प्यारा बनना
फिर वो छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए न्यारापन, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट एक बहुत अच्छा गुण है, डिटैचमेंट में ही सुख है, डिटैचमेंट में ही न्यारेपन में ही आनंद की अवस्था है। वो ऐसी अवस्था जिसमें चित्त किसी की भी याद नहीं कर रहा हो, अपने स्वस्वरूप में स्थित है, ऐसी स्थिति सबसे शक्तिशाली स्थिति है। तो योगी का चौथा लक्षण है न्यारापन। पांचवा, एकाग्र बुद्धि, स्वतः ही बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, एक वास्तव में परिणाम है वो सारी साधनाओं का। और एकांत प्रिय होगा योगी, एकांत, मौन और अंतर्मुखता, ये तीनों ही चीजें उसका श्रृंगार है, एकांत, मौन और अंतर्मुखी, इसी में योग हो सकता है। गंभीरता भी परिणाम है, स्वतः ही गंभीर रहेगा वो। ऐसा नहीं कि रमणीक नहीं है, रमणीक भी है, यहां चाहिए, परंतु तुरंत अंतर्मुखता, जो करना था कर लिया, काम पूरा, अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी न्यारा, अंतर्मुखी मौन और एकांत, एकांत का सेवन करना है, ये योगी के लक्षण है। नेक्स्ट। सेवा की पॉइंट छोड़ के
ये भी सेवा है, याद में रहना बड़ी सेवा है।
हाँ, याद में रहना भी सेवा है। और सिंपल सादगी, सिंप्लिसिटी, ना अति उच्चम ना अति नीचम, सादगी। सादगी योगी का श्रृंगार है, सिंप्लिसिटी ड्यूटी है, सदा सादा जीवन, उच्च विचार, बने हमारा जीवन महान। तो सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट, निर्बंधन भी एक रीति से परिणाम है, और समानता, समरसता, समरस एकर स्थिति है उसकी, चीजें उसे प्रभावित नहीं करती है, पक्षपात रहित। तो किसी भी तरह का पक्षपात, सभी के प्रति समभाव, समदृष्टि, एक समदृष्टि है, एक है एकरस। एकरस स्थिति का संबंध स्व से है, समदृष्टि का संबंध दूसरों से है। सभी के प्रति समान भावना, सब एक की संतान है, सभी सेम। हाँ, वो जो है वो भी समारसता नहीं है, उसमें भी आवेग है, उद्वेग है, भारत पाकिस्तान अपने ही देश से भी लगाओ।
बोला आज मुझे बाबा ने बता दिया इंडिया जीतेगा।
तो अप्रभावित रहना, एक रस रहना, निंदा और स्तुति समान रूप से रहना, ये योगी के लक्षण है। और नेक्स्ट, साक्षी भाव। चलो, साक्षी भाव भी एक अभ्यास भी है, परिणाम भी है, और कर्म होगी, और शरीर में भी स्थिरता रहना। किसी किसी का होता है ना, बैठते ही नहीं, 5 मिनट भी नहीं बैठते, कुछ ना कुछ हलचल चालू रहती है। शरीर भी तो स्थिर रहे, आसन जयी बनना है। जब एक ही आसन पर कोई 3 घंटा यदि बैठ सके, बिल्कुल ना हिलाए, उंगली भी ना हिलाए, उसे कहा जाता है आसन जयी। बैठे हैं, हाँ, वो धीरे धीरे दृष्टि भी स्थिर होती है। बैठे हैं, बैठने के बाद कोई भी चीज हमको डिस्टर्ब ना करे, कोई दरवाजा जोर से बंद कर रहा है, किसी का मोबाइल बज रहा है, कोई आकर ही फैन चालू कर रहा है। हमारा योग फैन से है कि अपने आप से है, कि बाबा से है, किससे है? फैन, मोबाइल, किसी का आना, किसी का बैठना, किसी का धक्का देना, ये सारी जो चीजें हैं, इनसे हम इन सबसे परे हो। हाँ, कोई सो रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है, कोई हिल रहा है बहुत ज्यादा, हमें स्थिर रहना है। किसी का परफ्यूम सीधा नीचे ला लेता है, सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में। तो योगी अर्थात स्थिर, बाजू में भी क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं,
ठंडा हो जाएगा 3 घंटे में।
ये तो आसन जय की परिभाषा है, एक ही आसन में स्थिर रहना। कोई 10 मिनट रह सकता है, उसको बढ़ाना है 10 से 15, 15 से 20, 15 से आधे घंटा। हाँ, कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है तो बढ़ा सकते हैं।
तो ये ग्रुप है, जैसे वो लोग उद्घाटन के टाइम 3-4 घंटे को ले रहे थे, तो जैसा खड़ा कर दिया।
हाँ, परंतु वो वही वाली बात है कि उसमें जैसे हमने यहाँ सुनाया या कहीं और सुनाया, वो उसी को नहीं पकड़ लेना है। जैसे महात्मा बुद्ध जो थे, इतने, हाँ वहां सुना था, महात्मा बुद्ध से इतने कमजोर हो गए थे कि वो जब नदी से बाहर निकले तो जैसे चक्कर आने लगे तो किसी ने फिर उनको खीर पिलाई, ठीक है। आज विश्व भर में सुजाता नाम की किसी महिला, विश्व भर में जितने ही बौद्ध के विहार है उसमें योग करने से पहले वो खीर पीते हैं, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है उस ध्यान में बैठने से पहले, अभी क्योंकि उन्होंने खीर पी थी। एक दूसरा, उन्होंने पद्मासन में बैठे थे तो पहले तो जो विदेश से लोग आते पहले पद्मासन सीखते सीखते हालत खराब हो जाती है 6 मास, क्योंकि जब तक वो नहीं सीखेंगे, क्योंकि बुद्ध ने पद्मासन में बैठकर ही परम सत्य को पाया था। तीसरा, हर बौद्ध विहार में एक बोधि वृक्ष है, उस बोधि वृक्ष का उसकी परम ज्ञान से कोई संबंध नहीं है एनलाइटमेंट से, तो ये ऐसा ना बन जाए। वही बिल्ली वाला जो बताया था कि या तो गुरु तो चेंज हो गए, बिल्ली भावना अभी भी चालू है तो ये वाली बात हो जाती है। वैसी ही बात होती है भोजन के लिए भी, भोजन के लिए भी वैसा ही हो जाता है, ये खाना है ये खाना है ये खाना है, वो किस लिए करना है वो भूल गया और उसी को पकड़ के रखे। उसी तरह आपने क्या बोला, हाँ बस अभी बस स्थिर रहना है, स्थिर रहना इसी के पीछे लग गया। अभी इसके पीछे लगने के लिए फिर योगासन सीखो, फिर योगासन सीखने के लिए फिर उनके पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, और सीख किस लिए रहे थे वही भूल गया। अभी फिर झगड़े इसके लिए हो रहे हैं कि आज खीर नहीं बनी है, तो कैसे योग लगे, आज कैसे ध्यान करेंगे किया किस लिए था और वो क्या रहा है, वो लक्ष्य ना भूल जाए। मुरली में आया था ना उस दिन, श्रीलंका की बात आई थी ना साकार मुरली में, कि वहां पर बौद्ध ही, श्रीलंका में बौद्ध खंड बहुत है, बौद्ध धर्म श्रीलंका खंड में बहुत है, तब ये बात निकली थी। तो उसको नहीं पकड़ लेना है, स्थिर। हाँ वो चलो ठीक है, हम बात कर रहे हैं योग की, क्योंकि योग में यदि शरीर स्थिर नहीं है तो आत्मा कैसे स्थिर होगी उस अस्थिर शरीर में, हिल रहे डुल रहे इधर हाथ उधर हाथ, यहाँ झुक रहे नीचे झुक रहे ऊपर झुक रहे। स्थिर अर्थात स्थिर, जो व्यक्ति संडली पर बैठता है वो कैसे नहीं हिलता है, बाबा की मदद होती है और वही व्यक्ति जब सामने आके बैठता है तो हिलना डुलना चालू करता है,
सामने के सब लोग देख रहे होते हैं।
हाँ तो उस दिन बात क्या कही थी हमने, कमरे में हो तो क्या समझना, ऊपर सब देख रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें देख रहे हैं, सारी दुनिया हमें देख रही है, हर समय देख रही है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई हमें नहीं देख रहा है। गॉड इज सीइंग यू, भगवान हमें देख रहा है। इसके लिए कहा ना योग, वास्तव में हम बाबा के कमरे में जब जाते हैं, सोचो उस कमरे में कोई भी नहीं है, तब हम वो आधा घंटा जितना स्थिर होकर बैठते हैं ना, वही हमारी वास्तविक योग की स्थिति है। जब 10 लोग आसपास बैठे हैं तब तो बिल्कुल योगी जैसा स्थिर ही बैठते हैं, पर कोई भी नहीं है कमरे में, तब ऐसा बैठे वह योग है। ये देह योग अर्थात ये देह से डिटैच, योग अर्थात डेड साइलेंस, योग अर्थात देह भूल जाए है ही नहीं, ये अनुभूति। बाकी हाँ योग नहीं कर रहे, खाली रूरियान चल रही है वो ठीक है, सुना रहे हैं बाबा को वो ठीक है, उसमें हिलना डुलना जो है वो चलेगा, परंतु योग जिससे विकर्म विनाश हो, जिसमें आत्माभिमानी स्थिति हो, उसमें तो देह समाप्त हो जाता है। विवेकानंद के जीवन में दिखाया है, एक बार वो योग में बैठे है ध्यान में, पहली बार जो ध्यान की अवस्था प्राप्त हुई उसमें जोर से चिल्लाए कि मेरा शरीर कहाँ है, जैसे फील ही नहीं हो रहा है शरीर कहाँ गया, ये बूढ़े आदमी ने क्या कर दिया, हाँ इसने क्या कर दिया, ये मैं बिल्कुल अभी जाऊंगा नहीं उनके पास, एकदम वो गुस्सा होते हैं पहली बार जो अनुभव होता है, क्योंकि वो लगभग नास्तिक जैसी अवस्था होती है उनकी, कि किसी पर भी विश्वास नहीं है, सब जो होता है ये सब बकवास है। उस समय वो ध्यान की अवस्था को प्राप्त होते तो पहला अनुभव जो है चिल्लाते, वेयर इज माई बॉडी, मेरा शरीर कहाँ है, कौन छीन रहा है मेरे शरीर को, अशरीरीपन का अनुभव, रूप भूल जाना, वो तो है ही, वो तो उनको डेजावू फिनोमेना होता था कि यहाँ पर एक ज्योति दिखती थी, तब तक दिखती थी बचपन में जब तक अपने गुरु से नहीं मिले, फिर वो दिखना बंद हो गई, और हर स्थान पर जाते थे तो डेजावू फिनोमेना होता था, इंग्लिश में डेजावू जिसको कहते हैं, नए स्थान पर जाने के बाद लगना कि ये स्थान पे मैं आया हूँ, नए व्यक्तियों से मिलने के बाद लगना इनको मैं पहले भी मिला हूँ, नई चीज पढ़ते पढ़ते लगना ये सब मुझे पहले ही पता है, इसे डेजा को कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये सब योगी के लक्षण है, चाहे वो योग करे ना, उसे कोई पता नहीं योग के बारे में, पर पहले ही ये जीवन में प्रकट होने लगते हैं। तो योगी अर्थात स्थिर, जिसका शरीर भी स्थिर है, तो इस शरीर को भी स्थिर करने का अभ्यास, और होगा वो ऐसा हो जाए कि लॉक हो गया शरीर, ऐसे बैठे हैं तो लगे कि लॉक हो गया है, अभी इसको चाहते हैं पर लगे ना इसको खोल ना सके, ऐसा लगे ये हिलना, मैं कभी कोशिश करूं हिलाने की पर ये हिल नहीं रहा है, ये अनुभव संपूर्ण शरीरपन का अनुभव है। फिर इसमें कोई आके फैन चालू कर रहा है, दरवाजा बंद कर रहा है जोर से, कि बाजू आके बैठ रहा है, किसी का मोबाइल बज रहा है, इससे क्या लेना देना है योग का? तेज आंधी तूफान आ रहा है, जो भी चल रहा है होने दो, कोई हमको फैन चाहिए, कोई आके फैन ही बंद कर दिया, तो पहली रिएक्शन क्या होती है, कौन है कौन है वो, हमको क्या करना है फैन से, हवा बहे न बहे, शरीर तो जड़ है, मिट्टी है, नीचे है, आत्मा योग शरीर का नहीं है, आत्मा का है। और हाँ, जब हम वैसे बैठ जाते हैं आत्माभिमानी स्थिति में, तो ये शरीर का क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। जैसे हमारा खुद का उदाहरण है कि हम आधा घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ कुछ दर्द है, हमको प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर इधर कुछ नहीं होता है, एक बाजू में प्रॉब्लम होता है कि आधा घंटा हो गया कि फिर थोड़ा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है अंदर हड्डी में या अंदर लिगामेंट में। पर हमने देखा जब हमको बोलना है और तीन घंटे अगर बैठना है, कुछ भी नहीं हुआ है, वो कहाँ गया दर्द? तो अभी मुझे लगता है वो भ्रांति थी, हम जो कि ये हमको लगता था कि हड्डी वालों को दिखाया तो कहते ये ऐसा ही रहेगा, इसको ठीक नहीं कर सकते, ये बचपन से है। अच्छा, बचपन से है ये तो हमने माना, पर जब हाथ में माइक है और कंटिन्यूस चार घंटा बोला तो कहाँ गया वो, और वही अवस्था। तो वो भी अभी हमको पता चला है कि हमने जो बचपन से पाल रखा था वो भी एक भ्रम था हमारा ये भी देहभान की अवस्था है, मतलब योग में वो अवस्था नहीं है। जो बोलने समय अशरीरीपन हो रहा है या देह का भान छूट रहा है, वो अभी योग में नहीं है, इसलिए वो भान हो रहा है कि आधे घंटे से ज्यादा हमको बदलना पड़ता है, ये दर्द होता है। फिर यहाँ पे बहुत तेज दर्द चालू होता है, पर यह कि तेज दर्द होता है हमेशा तो तब क्यों नहीं हो रहा है? शायद ध्यान बढ़ जाता है। तो योग का भी तो अर्थ यही है कि आत्मा का ध्यान देह से निकल जाए, दुनिया से निकल जाए, पुरानी दुनिया, मंडे की मुरली, पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, पुराने संबंध, पराया देश, ये सब कुछ पराया है यहाँ। तो हमारा वो योग की अवस्था नहीं है इसका मतलब। तो हम अभी वर्तमान ये पुरुषार्थ कर रहे हैं कि ये देह परंतु हो नहीं रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ध्यान अपने आप चला जाता है, इधर बिल्कुल नहीं जाता है, इधर 10 घंटा भी रुक सकते हैं, वैसे के वैसे कुछ नहीं होता। हाँ, हो जाएगा ना
ज्ञान प्राप्त हुआ।
हाँ, वो सब है, ठीक है बातें, पर अभी जो मठ में, उनके मठ तो नहीं कहते, विहार कहते हैं वहाँ पर, उनके जो विहार में होता है वो कुछ और ही हो रहा है ना,
परंपरा।
एक है मठ, एक है आश्रम, एक है विहार, तीन शब्द है। एक है मंदिर, मंदिर शब्द जैन और हिंदू धर्म के लिए मंदिर शब्द का प्रयोग होता है, मठ जो है वो आश्रम के लिए। वो शंकराचार्य का जब आगमन हुआ आविर्भाव इस संसार में 7वीं शताब्दी में, उसके आसपास मठ शब्द आया। आश्रम शब्द थोड़ा पुराना है, वैदिक काल से ऋषियों के लिए जो आश्रम थे वो आश्रम, फिर सन्यासियों के मठ, बौद्ध भिक्षुओं के विहार। मंदिर शब्द कल की मुरली में मंदिर के बारे में कुछ था शायद, सोमनाथ के मंदिर और मंदिर के बारे में था। तो मंदिर का भी मतलब इस तरह से मंदिर शब्द का भी है कि मंदिर जो सबसे पहले आए, पहले मंदिर नहीं होते थे, बाद में मंदिर बनने चालू हुए। वैदिक काल में मंदिर था ही नहीं, क्योंकि महाभारत में मंदिर का कोई वर्णन नहीं है, रामायण में मंदिर का वर्णन है परंतु बहुत कम जगह। तो ये भी एक सूक्ष्म अलग से पॉइंट है। हम कहां पर थे? शरीर स्थिरता पर। तो शरीर स्थिर, आसन जय बनना, सुखासन। ऐसा नहीं कि पद्मासन ही टांग पे टांग लगा के बैठना है, वो जरूरी नहीं है। सुखासन किसी भी स्थिति में जिसमें लंबा समय बैठ सके, आसन जयी अर्थात 3 घंटा एक ही आसन में स्थिर रहना। हाथ यहां रख दिया तो यही रख दिया बस, हमारा हट योग नहीं है। परंतु ये परिणाम समझो, जब ऐसी अवस्था हो जाए, इतनी योग युक्त अवस्था, इतनी लगन में मगन अवस्था, तब कहां कुछ हिलता है? कुछ नहीं हिलता है, स्थिर हो जाता है शरीर, परिणाम है। परंतु कभी कभी परिणाम को लाने के लिए, जैसे साक्षी भाव परिणाम है, उसको लाने के लिए कभी कभी उसको साधना भी बना सकते हैं। क्योंकि जब तक शरीर ही स्थिर नहीं है, कैसे योग कोई कर सकता है? परम धाम में एकदम बीज रूप अवस्था, और कोई कह रहा है कि वो हिल रहा है, और कह रहा है कि मैं अभी तक परम धाम में था, कैसे मानेंगे? उसमें तो शरीर ऐसा निश्चेष्ट, ऐसा स्थिर हो जाए, स्टिल डेड बॉडी जैसे, डेड साइलेंस, पता भी ना चले, ये भी अवस्था है। परंतु वो हिल रहा है बहुत, और इधर उधर उधर ये मच्छरों को तो बहुत सताया है सन्यासी, मच्छरों ने बहुत सताया है भारत के सन्यासियों को, योगियों को जितने मच्छरों ने सताया और किसी ने नहीं सताया। पर उसमें भी और एक सूक्ष्म बात है, मच्छर काट रहा है ठीक है, उसको हम हटाते कैसे? एक है थप्पड़ मार के हटाना, हिंसा का प्रतीक है, मतलब आत्मा शांत स्वरूप स्थिति में स्थित है, और हम योग में कटेकट करते कर बैठे हैं, और हमको मच्छर ने काटा और जोर से मारा, अर्थात योग था ही नहीं। योग युक्त अवस्था में आप हिंसा भाव है उसके पीछे, किसी मच्छर को जोर से मारना, इसके पीछे कितना बड़ा हिंसा, आक्रमण वृत्ति चाहिए, हमला करने वाली वृत्ति चाहिए, तभी उसको मारा जा सकता है, उसके सिवा कैसे मारेंगे? महात्मा बुद्ध के ही जीवन में उदाहरण है कि मच्छर बैठा हुआ है तो उन्होंने खाली हिलाया उसको और हटाया, और थोड़ी देर के बाद फिर एकदम ध्यान में आया उनको क्या गलती हो गई, फिर मच्छर था नहीं, फिर से हिलाया, तो आनंद पूछता है कि अभी तो मच्छर है ही नहीं, अब क्यों हिलाया, हाथ क्यों गल लेके गए? नहीं, उन्होंने कहा अब मुझे, क्योंकि ये संपूर्ण होश में आके करना है हर क्रिया को, पहले जो किया था वो अचानक हुआ था, इंपल्सिव रिस्पॉन्स था, वो अचानक मच्छर काटा, सोचा नहीं, बिना सोचे ही हाथ गया और उसको हिलाया, हिंसा भी नहीं किया, केवल उसको हटाया। किसी भी मच्छर को मारना ये भी हिंसा है, एक है उसको हटा देना वो ठीक है, परंतु मारने के बाद उसको दबाते हैं लोग ऐसे ऐसे, उसमें बहुत आनंद प्राप्त करते हैं, दबाया और उसको कुचलना, उसमें कितने सारी हिंसक भावना की आवश्यकता है। ये देखो मार दिया ठीक है, मारने के बाद वो मरा नहीं, अधमर रहा है, पर हम क्या करते हैं, फिर उसको उंगली से दबाते हैं, ऐसे ऐसे दबाते, देखा है हमने कईयों को योग में करते हुए देखा। और इधर हम कह रहे हैं हमारी बाबा से प्यार में मगन है, बीज रूप स्थिति है, पांचों ही आत्मा की स्थिति में ये कर्म नहीं किया जा सकता है, परम धाम की स्थिति में भी नहीं, देवता कभी ऐसा नहीं करेंगे, मूर्तियां कभी जड़ मूर्तियां पूज्य रूप ऐसा कभी नहीं करेंगे, श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्राह्मण डबल अहिंसक है, कली कहा था, ना तो गोली ना तो काम, और फरिश्ता तो ये कर ही नहीं सकते। तो मतलब हमारी ये पांचों से रहित देहभान की अवस्था है, उसमें हम है, तब कहीं जाकर ये कर्म किया जा सकता है, नहीं तो हाँ। परंतु उसमें कितना क्रोध, किसी की हिंसा करने, एक ने उसको हटा दिया ठीक है, उसको ऐसे कर दिया और शायद मर भी गया, परंतु क्या क्रोध रहित अक्रोध की अवस्था में किया जा रहा है? अब ये बताओ। मतलब यही पूछ रहे हैं कि क्रोध की अवस्था है या अक्रोध की अवस्था है, किस अवस्था में उसे हटाया जा रहा है, उसके प्रति हमारी वृत्ति क्या है, प्रेम और सुख की दृष्टि है
तो आएगा नहीं वो
क्या उस समय हमारे मन में ये विश्व कल्याण का भाव जागृत है कि ये जैसे हमें तंग कर रहे हैं और किसी को भी ना करे, इसके लिए हम इसकी मृत्यु का कारण बन रहे हैं, इसकी हत्या हम क्या इतनी श्रेष्ठ भावनाएं हैं? भाव क्या है? देखो ना, कोई ऐसे योग में बैठा है, ठीक है, इतना योग युक्त तो बाबा से जैसे अभी आसी और फिर जोर से मार दिया किसी को, अब बताओ क्या था? ये विश्व कल्याणकारी वृत्ति थी, दूसरों को ये न सताइए भावना थी, अक्रोध की अवस्था थी, प्रेममय स्थिति थी, अशरीरी अवस्था थी, आत्माभिमानी स्थिति थी, क्या थी? वो स्वयं, हम नहीं कह रहे ये गलत है वो गलत है, जो जिसको कर रहा है वो स्वयं ही देखे और स्वयं ही अपनी स्थिति पोस्ट प्री मर्डर एंड पोस्ट मर्डर पूर्व और बाद में स्थिति क्या है वो स्वयं ही देखे।
मन से बदलाव निकली
किसी से, कभी सूरज भाई से किसी ने प्रश्न पूछा था कि ये जो मच्छर मक्खी इनको मारना भी पाप है क्या? पाप तो है, ऐसा तो हो नहीं, पर बहुत छोटा पाप है, बहुत छोटा पाप है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, वो तो है ना, जीव आत्मा तो है ही ना, उसका भी कुछ नहीं। अरे हमने एक मठ में भक्ति काल में एक सत्संग हम सुन रहे थे, तो उसमें जो स्वामी जी थे वो स्वामी जी बैठे थे, तो उनका पैर में पूरा ब्लैक काला काला, हमको लगा वो सॉक्स पहने हुए हैं ब्लैक, तो इतना स्थिर बैठे थे और प्रवचन चल रहा था, एक घंटा तक प्रवचन चल रहा, पहले हमारा ध्यान नहीं गया, शायद पहले इतने मक्खी नहीं थे, पर वो सारी मक्खियां थी, काटने वाली नहीं, वो जो बड़ी मक्खियां होती है ना वो मक्खियां, परंतु वैसे के वैसे, और जब प्रवचन पूरा हुआ और पैर उन्होंने नीचे किया तो सब उड़ी, तब हमको पता चला कि वो सॉक्स नहीं है, वो काली मक्खियां है, स्थिर इतना, तो इतना स्थिर ये योगी की निशानी है। एक है अगर बहुत मच्छर है तो ऐसी जगह हम चले गए और वहां पर हमको योग करने बोले तो कि हम बस ये उत्पटांग मतलब नीचे ऊपर उठाव पटक करते रहेंगे बस, कैसे स्थिर हो सभी परिस्थितियों में? हाँ, जो भी है तो चलता फिरता करो, जो भी करो, पर हम कह रहे हैं क्या ये सारी परिस्थितियों में भी हम स्थिर रहे, देह स्थिर रहे, ये योगी की निशानी है, आंखें नैन स्थिर हो जाए योगी की निशानी है, जबान निश्चेष्ट हो जाए योगी की निशानी है, उंगलियां स्थिर हो जाए, पैर की उंगलियां, ये पैर की उंगलियां जिसकी जितनी हिलती है वो आंतरिक अस्थिरता की निशानी है, बैठे बैठे ऐसी 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 ये ऐसे ऐसे हिलाते रहते ना, ऐसे ऐसे कुछ कुछ करते रहते हैं, या नाखून से ऐसे गोल गोल घुमाते रहते हैं, ऐसे ऐसे कुछ कुछ करते रहते हैं ये सारी ही अस्थिरता की निशानी है। जब चित्त स्थिर हो जाए उस झील की तरह, कोई तरंग उसमें नहीं, वह योग की अवस्था है, तो ये योगी की निशानी है। कौन कौन सी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सबसे पहला था नाम रूप में नहीं फंसेंगे, दूसरा था चंचल नहीं होंगे, तीसरा न्यारापन, चौथा डिटैचमेंट, न्यारापन डिटैचमेंट में आ गया, चौथा मीठा और निंदा स्तुति में समान, और लास्ट उसका शरीर जो है अनासक्त, उसका शरीर जो है वो स्थिर, तो शरीर को स्थिर करने भी एक साधना है। इसके लिए तो यम नियम संसार में जो राजयोग है पश्चा उसमें आसन डाला हुआ है, क्योंकि देखा गया कि जब तक उस स्थिर में स्थिर नहीं होते योग नहीं लग सकता। अब बाबा बात कर रहे हैं सहज योग की, कि जिसमें प्यार इतना बढ़ जाए, पर क्या इतना बड़ा है कि शरीर ही भूला हुआ है? नहीं बढ़ा है अभी तक। बाबा कहते लेटे हुए आराम से बाप को याद करो, लेटे हुए आराम से तो याद कोई अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है, उसे किसी योग की जरूरत नहीं, किसी आसन की जरूरत नहीं, परंतु देह को साधना ये भी योग की एक तपस्या है। ओम शांति। शिवासन, शिवासन, शवासन, शिवासन, ओम शांति।
मतलब वो पहले ही बता देना चाहिए, दो मिनट।